हरे कृष्णा। तो हम लोग आज 12वां अध्याय पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 11वां अध्याय पढ़ा और इस 11वें अध्याय में ये चार जो हैं सब्जेक्ट डिस्कस किए गए। सबसे पहले किस प्रकार अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उस रूप को देखना चाहता है जिस रूप में भगवान ने बोला कि भगवान एक अंश से पूरे जगत को जो है मेंटेन करते हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन के कहने पर वो दूसरा 11.5 to 11.14। और फिर अर्जुन प्रार्थनाएं स्वीकार करता है भगवान को और अंत में भगवान चार चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर द्विभुज रूप दिखाते हैं। तो चैप्टर 11 में भगवान ने जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया और काल रूप दिखाया तो कोई व्यक्ति कह सकता है, सोच सकता है ऐसा कि शायद यही जो विश्व रूप है यही भगवान है। क्योंकि चर अचर जितने भी प्राणी हैं और सारे देवी देवता जो हैं वो सारे इसी रूप में जो है प्रकाशित हो रहे हैं, और जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है या जो कुछ भी भूतकाल में हो चुका है वो सब कुछ जो है इस काल रूप में दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा सोच सकता है। हमने 10वें अध्याय में देखा था कि किस प्रकार भगवान ने अपने ऐश्वर्यों को गिनाया था। लगभग 82 ऐश्वर्य गिनाए थे। एक्चुअली 82 नहीं, भगवान के अनंत ऐश्वर्य हैं, पर भगवान ने उसमें से कुछ को प्रकाशित किया। तो अंत में जब भगवान से अर्जुन कहता है कि आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए विश्व रूप दिखाने के बाद, और चतुर्भुज के बाद जब भगवान अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं, दो भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, तो उससे प्रूव होता है कि कृष्ण जो है वो सोर्स हैं चतुर्भुज रूप के भी और विराट रूप यानी विश्व रूप के भी। तो कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण केवल बोलते ही नहीं है, वो करते भी हैं। तो विश्व रूप में किसी को समझना चाहिए कि जो विश्व रूप है या चतुर्भुज रूप है, ये दोनों द्विभुज रूप से आ रहे हैं। दो भुजाओं वाला जो भगवान का स्वरूप है जिसमें भगवान बांसुरी बजाते हैं कृष्ण, वो वहीं से आ रहे हैं। और अंत में सब कुछ कहाँ चला जाएगा, वहीं जाने वाला है। तो कभी कभी ये विश्व रूप को देख के एक डर लोगों के हृदय में आ जाता है और डर के साथ साथ रिस्पेक्ट भी आती है। कहा जाता है जहां डर रहता है वहां फिर आदर भी करने लगते हैं लोग। तो ठीक वैसे ही इस रूप को देख के लोग डर जाते हैं और डर के कारण भगवान का आदर करना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो विश्व रूप है ये टेम्परेरी है। जब भी इस भौतिक जगत का निर्माण होता है तब इस विश्व रूप की जरूरत पड़ती है। जब भी इस भौतिक जगत का निर्माण नहीं होता, यानी कि जो है ये अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, तो उस समय इस विश्व रूप की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये जो दो भुजाओं वाला रूप है भगवान का, ये शाश्वत है, ये परमानेंट रहने वाला है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे। ये समझ लीजिए कि विश्व रूप जो है उसमें भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका भंडार दिखाई देता है, और जो विश्व रूप का शरीर है स्वरूप है वो चिन्मय नहीं है। चिन्मय मतलब परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। लेकिन जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। यानी भगवान का शरीर कोई भौतिक पदार्थों से मिलकर नहीं बना है। तो विश्व रूप के सोर्स भी कौन है, कृष्ण है। लेकिन कृष्ण का कौन सोर्स है, कृष्ण का कोई सोर्स नहीं है, कृष्ण का कोई भी स्रोत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण जो है वो अनादिर आदि गोविंद, वो सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके पिता हैं। भगवान कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो इसका अर्थ है कि वो सबके पिता हैं। अभी ये जो दो भुजाओं वाला रूप है ये शाश्वत है, आदि है और मूलभूत स्वरूप है सृष्टि का। क्योंकि जब सृष्टि होती है तो भगवान कृष्ण से वास्तव में सर्ग शुरू होता है, फिर विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने अपने द्विभुज रूप को दिखा के ये 11वां अध्याय जो है वो यहाँ पर समाप्त किया। अभी हम लोग 12वां अध्याय पढ़ने का प्रयास करेंगे। 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग, और इसको यहाँ पर तीन भागों में GOD में डिवाइड किया गया है। पहले 7 श्लोक जो हैं वो भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, भगवान अव्यक्त हैं या व्यक्त हैं, या भगवान की भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए, और ऑप्शंस देते हैं भगवान 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक, और भक्तों का स्वभाव किस प्रकार का होता है वो भगवान 13 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक बताते हैं। भगवद गीता के 2 सबसे छोटे श्लोक अध्यायों में ये अध्याय है, 12 नंबर का अध्याय और 15 नंबर अध्याय। तो इस अध्याय में केवल 20 श्लोक ही हैं, तो हम आज इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता अगर आप लोगों के पास है तो कृपया उसको ओपन कर लें, 12वें अध्याय का 1 नंबर का श्लोक। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अर्जुन ने यहां पर हम 11वें और 12वें अध्याय का संबंध देखते हैं कि भगवान ने 11 अध्याय के 55 नंबर श्लोक में बताया था कि भक्ति योग जो है, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा, कि जो व्यक्ति कर्म ज्ञान इन सबसे मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में लग जाता है, और जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही अपना जीवन समझता है, मुझे ही जीवन लक्ष्य मान लेता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। इस तरीके से भगवान ने बताया था। तो अभी वही भक्ति योग जो कि भगवान ने 11:55 में बताया, उसी के बारे में भगवान यहाँ पे आगे और बोलेंगे अर्जुन के प्रश्न के द्वारा। अर्जुन भक्ति योग के बारे में जानने के लिए भगवान से प्रश्न पूछता है कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम युक्तम तेषाम के योगवितमः। तो दो लोग जो सतत युक्त हैं भक्ति में, वो लोग और दूसरे ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम जो निराकार रूप की उपासना करते हैं, दो लोग, एक जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं, और दूसरे जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं यानी कि आपकी डायरेक्ट भक्ति करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, साकार उपासक श्रेष्ठ हैं या निराकार उपासक श्रेष्ठ हैं, अर्जुन का यह प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि साकार रूप में भगवान का विग्रह की सेवा, भगवान की सेवा की जा सकती है, निराकार में हम भगवान का कोई आकार नहीं ऐसा करके मानते हैं वो बहुत कठिन है, भगवान भी ये बात बोलेंगे आगे। अभी कई जो लोग निराकार रूप के उपासक होते हैं या ज्ञान मार्ग होते हैं या फिर अष्टांग योग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखा जाता है अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं और उसके बीच में बैठ के जो है, हाँ, वो ध्यान लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, वो आत्मा को कष्ट देते हैं, कभी कभी ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते हैं। तो इसलिए भगवान अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में इसका आंसर देना शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न, दो तरीके के लोग, पहला जो भगवान की डायरेक्ट भक्ति में भगवान का नाम लेता है, और दूसरा जो ओमकार या फिर निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करता है। तो इन दोनों में कौन पूर्ण है, कौन किसको सिद्ध मानना चाहिए, ये अर्जुन का प्रश्न है। ये देखिए, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, ये मान के या ओम बोलते हुए चारों तरफ आग लगा के ऐसे बैठते हैं लोग या ठंडे पानी में। तो भगवद गीता में भगवान अभी आगे ही 6वें 7वें अध्याय में बोलते हैं कि जो भक्त हैं उनका जन्म मृत्यु के सागर से मैं शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि भक्तों को भगवान स्वयं जो है उनको बचाते हैं, वो उनके जन्म मृत्यु के सागर से उनका शीघ्र उद्धार करते हैं। भगवान कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वयं परियुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। ये अर्जुन का प्रश्न में भगवान इसका आंसर देते हैं, मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमामता। वो बोलते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में लगाते हैं वो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं और वो लोग सिद्ध माने जाते हैं, ते में युक्त तमामता। ये मेरा मत है कि वो सिद्ध है। यानी भगवान यहाँ पे सीधा सीधा निराकार उपासना का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भक्त है वो सिद्ध है। अभी अर्जुन प्रसन्न हो गया इस बात को सुनके, लेकिन वो जानना चाहता था कि निर्विशेषवादी जो हैं, जो निराकारवादी हैं, उनकी गति क्या होती है, क्या वो अगत्य की उपासना करने में सक्षम होते हैं। तो भगवान उसका आंसर तीसरे चौथे श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं, ये त्वक् चरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिपासत सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम संनिम्यनिन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। लेकिन जो अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य के निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरीके से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहां पे भगवान पहले श्लोक में बताएं कि जो लोग श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं वो सिद्ध माने जाते हैं, उनको मैं इजिली प्राप्त हो जाता हूं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो निराकार की कल्पना के आधार पर उसकी पूजा करते हैं, वो लोग भी समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, यानी लास्ट में वो भगवान के पास आते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, भगवान ने इस निराकार के बारे में बताया था, क्लेशो अधिक तरसते साम, उसमें बहुत क्लेश है, वो बहुत कठिन रास्ता है। जब भक्ति हम करते हैं तो हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं, नवदा भक्ति करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के धाम, भगवान के लीला, भगवान के गुण, इनमें फेथ रखता है, इनमें विश्वास रखता है, भगवान कहते हैं ये लोग मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो ओमकार पे, ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करता है, वो मुझे प्राप्त तो करता है लेकिन बहुत बाद में प्राप्त करता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी जान पाता है कि वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो कृष्ण है वो सर्वमिति है और ऐसा महात्मा जो है बहुत दुर्लभ माना गया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कथा बताते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति को अपने ससुराल जाना था, वो आज के पहले कभी भी ससुराल गया नहीं था, तो उसको रास्ता भी नहीं मालूम था, गूगल मैप भी नहीं था तभी, फोन वगैरह भी नहीं थे तभी, तो ससुराल के गांव का नाम जस्ट जानता था वो। उसने सोचा मैं किसी से क्यों पूछूं, मैं खुद अपने हिसाब से जानने की प्रयास करूंगा, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। और इस तरीके से वो उस गांव में प्रवेश करता है। अभी गांव में घर कौन सा है उसको पता नहीं, तो उसको कुछ गाय दिखाई देती हैं, तो जान जाता है, कहता है शायद ये गाय जो है हमारे घर की, हमारे ससुराल की ही होंगी। और इस तरीके से वो क्या करता है, एक गाय की एक पूंछ पकड़ लेता है, तो सोचता है गाय तो अपने घर ही भागेगी, तो इस तरीके से गाय की पूंछ पकड़ के पकड़ता है, जैसे तो गाय तो डर जाती है, गाय भागने लगती है, और ये व्यक्ति उसकी पूंछ पकड़ा हुआ है तो ये भी जो है उसके पीछे पीछे बेचारा जो है गिरता हुआ, पड़ता हुआ, खिंच रहा है और उसको बहुत सारे शरीर में चोट लग जाते हैं। घर पहुंचता है, घर के बाहर तो लोग, बाहर के लोग समझने लग रहा है कोई चोर आया है जो गाय चोरी करना चाहता है, तो वो लोग भी उसको मारने का प्रयास करता है। तब तक उसकी पत्नी आती, कहती नहीं 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 ये तो हमारे पति हैं, ऐसा करके वो अपने घर ले जाती। तो कहने का अर्थ है कि वो घर तो पहुंचा लेकिन इजिली नहीं पहुंचा, जिस आसानी से वो पहुंच सकता था वो उस तरीके से नहीं पहुंचा, बहुत टाइम लगा और रास्ता बहुत कठिन था। तो वैसा ही होता है ब्रह्म ज्योति के जो उपासक होते हैं उनके लिए भी, वो भी पहुंचते हैं लेकिन समय बहुत लगता है, तो वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं वास्तव में। जैसे मैं आपको बोलूं कि नाक कहाँ है? तो एक है कि मैं सीधा सीधा नाक को पकड़ के बोलूं ये नाक है, आप कहें नहीं नहीं ऐसे कैसे, आपने तो बिल्कुल सीधा सीधा बता दिया, आप दूसरे तरीके से बताइए। तो आंख को आप अपने आंख के ऊपर हाथ रखें, बोले ये नाक है, तो मैं बोलूंगा नहीं। फिर आप अपने माथे के ऊपर हाथ रखें, बोलेंगे ये नाक है, मैं बोलूंगा नहीं। फिर अपने सिर के ऊपर हाथ रखें, बोले ये नाक है, नहीं। ऐसा करते करते सारे अंगों को टच करें, आप लास्ट में नाक के पास पहुंचे, ये है, हाँ यही है, या जो अभी जो अभी तक जो नहीं बोला वो नाक है। तो ऐसा ये जो है ये अप्रत्यक्ष पद्धति है। प्रत्यक्ष पद्धति क्या है? डायरेक्ट नाक में हाथ रखा, बोला ये नाक है। तो वैसे ही जो अव्यक्त उपासक होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरा वाला रास्ता अपनाते हैं, वो घूम घूम के जाने का प्रयास करते हैं, ये भगवान है नहीं, ये भगवान है क्या नहीं, पृथ्वी भगवान है नहीं, जल भगवान है नहीं, वायु भगवान है क्या नहीं, आकाश भगवान है नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी जो बचा वो भगवान। तो इस तरीके से उनको जो है बहुत कष्ट मिलता है, कहने का अर्थ है। तो ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में डिफरेंस है। ज्ञान मार्ग में हम क्या सोचते हैं, हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरीके से हम केवल ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। क्योंकि हम जब भगवान के पास जाने का प्रयास करेंगे तो भगवान का जो स्वरूप है उसके ऊपर एक आवरण है, उस आवरण का नाम है ब्रह्म ज्योति। जैसे सूर्य, जो सूर्य लोक है वो भी हमको उसका जो हमें प्रभा दिखाई देती है, वो जो उजाला दिखाई देता है वो क्या है, उसके ऊपर एक आवरण है। वैसे ही भगवान के ऊपर एक आवरण है जो कि उनके स्वरूप से ही निकला हुआ है। तो जो ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं वो केवल उस आवरण को ही देख पाते हैं, वो भगवान को अंदर बैठे वो नहीं देख पाते। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान के ऊपर उनकी फेथ है, भगवत गीता के ऊपर उनकी फेथ होती है, उनका विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, और वो शुद्ध भक्ति करते हैं, तो कृष्ण जो है अपने आप उस आवरण को खत्म कर देते हैं उनके लिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। जो ज्ञानी है वो भगवान की शरण नहीं लेते, इसलिए वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे अभी जो सरकार है, सरकार निराकार है, सरकार दिखाई नहीं देती लेकिन पूरे भारत देश में व्याप्त है। तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री से डायरेक्ट नहीं मिल सकता, कि ऐसे भी मिलना चाहे कि मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता, ऐसा नहीं मिल सकता। लेकिन मान लीजिए अगर वो व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, कुछ ऐसा कार्य करता है जिसके कारण भारत देश को बहुत फायदा होता है, या फिर कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो प्राइम मिनिस्टर उसको खुद बुलाएंगे, बोलेंगे आओ, वो खुद जो है वो रास्ता क्लियर कर देंगे। तो वही भगवान के साथ है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की विशेष सेवा करता है, शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो कृष्ण उसको खुद बुलाते हैं। सॉरी। तो बाकी लोग जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं क्लेशो अधिक तरसते साम, मेनी मेनी क्लेशेस आर देयर, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, कर्म है, ज्ञान है, अष्टांग योग, ये सब जो है क्लेश से भरे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, भगवान बोलते हैं पांचवें श्लोक में, क्लेशो अधिकतरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। बोलते हैं कि बहुत कठिन रास्ता है, क्लेशो अधिकतर, ज्यादातर क्या है, कष्ट मिलता है इस रास्ते में। भक्ति भक्ति इजी है, लेकिन ये जो निराकार की उपासना है ये बहुत टफ है। तो इन जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। गतिर दुखम देह वधिर वापित। अभी अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, कहते हैं कि भक्ति जो है बहुत इजी है करने के लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं सन्यस्य मत परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु पासते। सॉरी। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कहते हैं कि जो जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं उनको खुद उनका उद्धार करता हूं। अभी आप फोटो में देख रहे हैं किस तरीके से एक भक्त जो है वो जन्म मृत्यु के संसार में पड़ा हुआ है। तो भगवान कहते हैं मैं उसकी पर्सनल केयर करता हूं, मैं खुद उसको उद्धार करने के लिए आता हूं। आगे चलते हैं आगे के श्लोकों में। अभी 8 नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक तक भगवान हमको ऑप्शंस देते हैं। ये श्लोक वास्तव में बहुत सरल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। हम भी उनके उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पिछले श्लोक जो भगवान ने बताया, ये तो सर्वाणि कर्माणि और तेषाम अहम् समुद्धरता, वो किसके लिए बताया? जो सारे कर्मों को त्याग देता है, केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान को हार ऑफर करता है। तो भगवान कहते हैं मैं उसकी पर्सनल केयर करता हूं और उसको भौतिक संसार का जो जन्म मृत्यु का सागर है उससे मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो कोई कह सकता है कि मैं जो है शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, तो भगवान उसको और ऑप्शन देते हैं। ये यहां पे 8 नंबर श्लोक से लेके 12 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे खास करके 4 स्तर बताए गए हैं। 8 से 9 में भगवान आंतरिक इंद्रियों द्वारा भक्ति करने के बारे में बताते हैं, 10 में बाह्य इंद्रियों के द्वारा भक्ति, 11 में कर्म फलों का त्याग कैसे किया जाता है और 12 में भक्ति के स्तरों का बताते हैं। तो पहला है आंतरिक इंद्रियों के द्वारा भक्ति, 8 नंबर का श्लोक। मै एव मना धत्स्वा मै बुद्धिम निवेशया निविशिष्यसि मै एव अत ऊर्ध्व न संशयः। कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करो। तो भगवान में अपने चित्त को स्थिर करना और सारी बुद्धि भगवान में लगाना, ये 2 चीजें जो है बताई गई। जो पहला है अपने मन को मुझ में स्थिर करो, इसको बोला जाता है स्मरणात्मिका भक्ति। इस स्थिति में जो भक्त होता है वो भगवान का कंटिन्यू स्मरण करता है, यानी उसका मन किसी और दिशा में जाता ही नहीं है। ये पहला, तो भगवान कहते हैं इसको सबसे बेस्ट यह है कि अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो, अपने मन को मेरे में स्थिर करो, इसको स्मरणात्मिका भक्ति कहते हैं। अभी कोई व्यक्ति ये इतना नहीं कर सकता, वो इतना शुद्ध भक्त नहीं है कि भगवान के नाम जप में या भगवान में पूर्ण रूप से स्थिर है, तो वो क्या कर सकता है, मुझ में अपनी बुद्धि को स्थिर करो। इस स्टेज को बोला जाता है मननात्मिका भक्ति, मनन करना, यानी अपनी बुद्धि को यूज करो, भगवत गीता पढ़ो, मेरे प्रति आकर्षण बढ़ाओ और धीरे 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 मेरा सतत स्मरण करो, तो उससे क्या होगा, तुम सुख दुख गर्मी सर्दी इन सबसे ऊपर आ जाओ। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। इस तरीके से चिंतन करने से क्या होगा, तुम मुझ में निवेश कर जाओगे। तो जब भी ये श्लोक आता है तो मुझे एक कथा याद आती है। एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुए, उनका नाम था नाथ मुनि। नाथ मुनि के एक साउथ इंडिया की बात है, तो नाथ मुनि के एक पौत्र थे, पोते थे, उनका नाम था यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य छोटे पर से ही बहुत बुद्धिमान थे। तो एक दिन उनके जो गुरु थे, उनके गुरु एक शर्त हार गए थे किसी से, तो इसलिए उनको कुछ जो है क्या बोलते हैं डोनेशन देना होता था जिससे वो शर्त हारे थे। किसी कारणवश एक ऐसा तर्क शास्त्र शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें वो हार गए थे। तो यमुनाचार्य को पता चला, तो यमुनाचार्य ने कहा उस व्यक्ति से मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, और ये केवल 5 साल के थे। जब यमुनाचार्य वहां पर पहुंचे, वो जो व्यक्ति था उससे शास्त्रार्थ करने के लिए, तो राजा ने घोषणा कर दी कि अगर यह लड़का जीत जाएगा तो मैं आधा राज इसको दे दूंगा। और यमुनाचार्य भगवान की कृपा से जीत गए और अभी यमुनाचार्य को राजा बना दिया गया। आधा राज्य पुराने राजा के पास रह गया और आधा राज्य जो है यमुनाचार्य के पास आ गया। अभी यमुनाचार्य राजा बन गए। नाथ मुनि वो सोच रहे थे कि ये मेरा जो पोता था ये इतना अच्छा भक्त था, अभी ये राज कार्य में लग गया और इसका जीवन जो है वास्तव में खराब हो गया। हम लोगों की थिंकिंग क्या होती है, किसी की नौकरी लग गई, किसी को राज्य मिल गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ हो गया, तो हम सोचते हैं कि उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन भक्त क्या सोचता है, अभी वो जो है सांसारिक पचड़े में फंस गया और वो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो नाथ मुनि ने अपने एक शिष्य को भेजा जिनका नाम था राम मिश्र। राम मिश्र को भेजा यमुनाचार्य के पास में। तो राम मिश्र कैसे मिल पाएंगे यमुनाचार्य के पास में, क्योंकि यमुनाचार्य बहुत बड़े राजा थे और उनसे मिलने के लिए बहुत छोटे छोटे राजा उनसे मिलने के लिए आया करते थे। तो उन्होंने सोचा क्या करूं, ऐसा करके सोचते सोचते एक दिन वो एक विशेष प्रकार का साग लेके गए, जो राजा का कुक था उसको उन्होंने दिया। बोले ये साग जो है इसको इस तरीके से बनाओ और राजा को खिलाओ। तो कुक ने वही किया और साग जो है बहुत टेस्टी था, राजा को बहुत पसंद आया। अगले दिन फिर से उन्होंने दिया, अगले दिन फिर से दिया, ऐसा करके एक हफ्ते तक रोज साग जो है दिया। एक हफ्ते के बाद एकदम से उन्होंने साग लाना बंद कर दिया, दो दिन आए नहीं। राजा रोज याद कर रहे हैं, अरे वो साग कहाँ है। तो कुक से पूछा तो कुक ने कहा कि एक विशेष व्यक्ति मुझे लाके देता था, लेकिन अभी वो व्यक्ति आ नहीं रहा दो दिनों से। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको बोलना कि वो कंटिन्यू मेरे को लाके देता रहे। ठीक। राम मिश्र जब अगले दिन आए तो राम मिश्र ने कहा कि अगर राजा को वो कंटिन्यू वो साग चाहिए तो उनसे बोलो कि मेरे से मिले। तो राजा एग्री हो गया और राम मिश्र जो है उनसे मिलने के लिए गए। तो राम मिश्र ने राजा से कहा, महाराज आपके दादाजी श्री नाथ मुनि एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं और वो खजाना मैं आपको सौंपना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा है नहीं और वो मुझे बोल के गए कि आपको सौंप देना है, तो कृपया आप उस खजाने को मेरे से स्वीकार कर लीजिए। यमुनाचार्य ने कहा, अरे हाँ मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, राजकाज में बहुत पैसा लग रहा है, कृपया मुझे खजाने के पास लेके चलो। एक काम करो, मैं कुछ मंत्रियों को भेज देता हूँ खजाने ले। बोले नहीं नहीं मंत्री मंत्री नहीं, आपको ही आना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं फिर भी कुछ मंत्रियों को साथ में ले। बोले नहीं आपको अकेले आना पड़ेगा। तो इस तरीके से राजा एग्री हो गया। जब राम मिश्र ने बोला कि ये कुछ गुप्त है, रहस्य है, तो आपको अकेले ही आना पड़ेगा। और इस तरीके से राम मिश्र आगे आ गए और राजा जो है पीछे पीछे उनके चलने लगे और राम मिश्र भगवद गीता को गाते हुए जा रहे थे। संजय उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, ऐसा करके एक एक श्लोक गा रहे थे। तभी एक पेड़ के पास पहुंचे वो राम मिश्रा, और उस पेड़ के पास पहुंचकर राम मिश्र ने 12वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक गाया। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निविशिष्यसि मयि एव अतूर्ध्वं न संशयः, अपने मन को मुझ में लगाओ, इससे क्या होगा तो मुझ में ही जियोगे और अंत में मुझे प्राप्त करोगे। जैसे ही ये श्लोक को यमुनाचार्य ने सुना, यमुनाचार्य तुरंत बहुत रोने लगे और बोलने लगे ये जो श्लोक है ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक हुआ करता था, मैं इस श्लोक को कंटिन्यू बोलता रहता था, पूरे दिन बोलता रहता था। जब से मैंने ये राज्य ग्रहण किया है तब से सब कुछ बंद हो गया, अभी मुझे वापस नहीं जाना, अभी मुझे वानप्रस्थ ले लेना है और मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं खजाना तो मैं दूंगा ही आपको, खजाना तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपका है। तो राजा ने कहा ठीक है चलिए। तो उन्होंने कहा कि देखो खजाने को प्राप्त करने के लिए आपको 7 द्वारों को पार करना पड़ेगा और 7 द्वार पार करने के बाद उस खजाने की रक्षा एक सर्प कर रहा है, तब आपको वो खजाना प्राप्त होगा। तो वो कोई और नहीं है, रंगनाथ जी में, भगवान श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है, वो रंगनाथ मंदिर में 7 गेट हैं, उनसे जब आप प्रवेश करेंगे तब आप रंगनाथ जी का दर्शन करेंगे, और रंगनाथ जी अनंत शेष पे सैया में वो लेटे हुए हैं। उनका दर्शन जैसे ही किया यमुनाचार्य जी ने, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये भगवान वो शांत आकार में लेटे हुए हैं, भुजग शयनम किसके ऊपर शैया में है, वो सर्प के ऊपर है लेटे हुए, उनका दर्शन जो है वो वास्तव में वही खजाना है। जैसे ही राजा ने उस दर्शन को प्राप्त किया, राजा तुरंत बेहोश हो गया, और इस तरीके से नाथ मुनि जो उनके दादाजी थे वो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो मेरा पौत्र जो है वो बैक ऑन ट्रैक हो गया। तो ये स्मरणात्मिका भक्ति है, इसमें कंटिन्यू भगवान का स्मरण होता है, ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए है। अभी दूसरी जो है वो मननात्मिका भक्ति है, जिसमें बुद्धि को स्थिर करने को बोला गया है, यानी भगवान के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़ने को बोला गया है। तो इस तरीके से क्या होगा, व्यक्ति धीरे धीरे समझ जाएगा कि कोई और रास्ता नहीं है। तो ये रास्ता बताया भगवान। अभी ये जो है ये सबके लिए संभव नहीं है, स्मरणात्मिका भक्ति और मननात्मिका भक्ति, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको अगला ऑप्शन दिया है, वो है अभ्यास रूप भक्ति। श्लोक संख्या 9, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मै स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम अपने चित्त को न समाधातुम अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो क्या करो, शक्नोसि मै स्थिरम, अगर तुम शक्नोसि नहीं हो तो अभ्यास योगेन ततो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न करो। तो यहां पे अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो, यह प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ है अभ्यास रूप भक्ति। 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो। अभी आजकल आप किसी को लेक्चर देना चाहते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बोलना चाहते हैं, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता, वो वीडियोस 2-3 मिनट के वीडियो देखते हैं आजकल लोग, उससे ज्यादा नहीं देखते, 1 मिनट का वीडियो देखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली है और वो भगवान के बारे में शास्त्रों से सुनता है तो मननात्मिका भक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो क्या करना है, उसको अभ्यास रूप भक्ति करना है, जिसके द्वारा वो भक्ति करता है और उसके अंदर एक डिजायर आती है भगवान को प्राप्त करने की, एक इच्छा जागृत हो जाती है कि भगवान को प्राप्त करे। तो जब तक किसी के अंदर इच्छा नहीं होगी तब तक भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, इच्छा होनी चाहिए। कोई इसको पढ़िए,
अगले श्लोक के संबंध ऊपर वाणी 3 प्रकार की भक्ति, मरणात्मिक भक्ति, मरणात्मिक भक्ति, अभ्यास रूपी भक्ति मन और बुद्धि के द्वारा की जा सकती, बुद्धिमान और निरपराधी लोग इन्हें आसानी से कर सकते हैं, परंतु अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए यह दुष्कर है, क्योंकि उनका मन हवा की तरह चंचल होता है और वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जो लोग निरंतर अभ्यास से भी मन को एकाग्र नहीं कर सकते, कृष्ण उनके लिए अगला मार्ग बताते
हैं, बस
कृष्ण के लिए कर्म करो।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भगवान को, भगवान ने दिया कि स्मरणात्मिका भक्ति, हमेशा मेरा स्मरण करो। दूसरा, मनन करने को बोला, मेरे ग्रंथों को पढ़ो, मेरे पर मनन करो। तीसरा, व्यक्ति को बोला कि भाई तुम अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो अभ्यास रूप भक्ति करो, यानी नियमों का पालन करो, जो भक्ति के नियम हैं उनका पालन करो, विधि विधान जो है उनका पालन करो। तो कोई कहेगा भाई हम ये भी नहीं कर सकते, तब जैसे एक भक्त थे वो लगभग 10 साल से हरे कृष्णा मंत्र का 16 माला जप कर रहे थे। 10 साल हो गया लेकिन उन्होंने तंबाकू खाना नहीं छोड़ा, उन्होंने तंबाकू खाते थे तो दीक्षा नहीं ले पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। अभ्यास योग, अभ्यास योग क्या है? अभ्यास योग है कि गुरु के शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने अपने 40-50 साल जो है अपने जीवन को उन्होंने भगवान की और शिला प्रभुपाद की सेवा में समर्पित किया हुआ है, तो उनके द्वारा जो विधि विधान दिए गए हैं उनको फॉलो करना, भगवान को हार पहनाना, भगवान को भोग लगाना, केवल प्रसाद खाना, भक्तों से भगवान के बारे में सुनना, भक्तों के साथ रहना, उनका संग करना, तो ऐसे लोग जो हैं ये अभ्यास योग कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता, जो नियमों का पालन नहीं कर सकता, 4 नियमों का पालन नहीं, नशा नहीं करना चाहिए तो नशा कर रहा है वो, तो व्यक्ति है वो 4 माला जप कर, 10 साल हो गया अभी भी उनको इनिशिएशन नहीं मिले क्योंकि हमारे यहाँ नियम है 16 माला करना चाहिए, तब क्या कर सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं कृष्ण के लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। अभ्यासे अपे समर्थो सी मत कर्म परम भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। बोलते हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तो कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, क्या मतलब इसका? यानी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर बन रहा है तो उसको उसके लिए डोनेशन देना, भगवान के जो किताबें हैं उनको प्रिंट होने के लिए उनके लिए डोनेशन देना। जैसे कि एक मशहूर संगीतकार थे जॉर्ज हैरिसन विदेश में, तो उन्होंने उस समय पे 19,000 पौंड जो हैं वो प्रभुपाद जी की किताबों को प्रिंट करने के लिए दिए थे। वो जप नहीं करते थे 16 माला, या फिर वो स्मरणात्मिका भक्ति मननात्मिका भक्ति नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ये कार्य किए। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है, डायरेक्टली भक्ति नहीं करता लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने से वो क्या होगा, वो शुद्ध होता चला जाएगा, क्योंकि वो किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है, वो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके वॉलंटरली सेवा करने से, जैसे कभी कभी कुछ लोग आते हैं मंदिर में और वो मंदिर में दर्शन करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि महाराज हम क्या कर सकते हैं, कैसे है सेवा कर सकते हैं मंदिर की, मंदिर बन रहा है उसमें हम कैसे सेवा कर सकते हैं, मंदिर की जो गतिविधियां चालू हैं काफी खर्चा होता होगा उसमें हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो उनको भाई बताया जाता है कि इस तरीके से आप लक्ष्मी के द्वारा सेवा कर सकते हो या कुछ अन्न ला के सेवा कर सकते हो। इस तरीके से वो डायरेक्ट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो ये करते हैं और उनको क्या होता है, जो है स्वीकृति प्राप्त होती है। जैसे एक भक्त थे तो बोले कि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उनकी बसें चलती थी, तो उन्होंने कहा हम बस का किराया नहीं लेंगे, केवल आप डीजल का खर्चा जो है दीजिएगा, हमारी यात्रा जा रही थी द्वारिका। तो इस तरीके से वो कुछ हेल्प करना चाहते हैं। जैसे कोई मार्बल वाला है तो मंदिर के लिए मार्बल चाहिए तो मार्बल दे देता है, कम रेट पे दे देता है या फिर मुफ्त में दे देता है। एक ज्वेलरी वाला था, वो बोला मैं भगवान के लिए एक बांसुरी देना चाहता हूँ सोने की। तो इस तरीके से वो कुछ सेवा करना चाहते हैं। वो बहुत बिजी हैं, वो भगवान के लिए वो चैंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये चौथा कार्य वो कर सकते हैं, मत कर्म परमो भवा, मेरे कर्म के मेरे लिए कर्म करना। तो कभी कभी किसी परिवार में देखा जाता है कुछ पाबंदियां होती हैं, दान देने में भी लोग पाबंदी करते हैं, अरे भगवान के लिए क्या दान देना, इस्कॉन वाले बहुत अमीर हैं उनको क्या दान देना, जो है गरीबों को दान दो। तो क्या हो रहा है, वास्तव में ये जो लोग हैं ये कर्म त्याग तो कर रहे हैं लेकिन अनासक्ति नहीं आएगी, क्योंकि गरीबों को देने से या फिर अन्य किसी कार्य में दान देने से उससे आसक्ति बनी रहती है। त्याग कब आएगा, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भावना से कार्य करता है तो त्याग आता है और वो उच्च प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जो है वो पहले तरीके के भक्त, स्मरण आत्मिक भक्ति, कंटिन्यू भगवान का स्मरण। दूसरे तरीके के लोग जो जो शास्त्रों को पढ़ते हैं। अभी बताया गया है कि जो ध्यान है वो ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर कोई ध्यान नहीं कर सकता तो ज्ञान कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई ज्ञान भी नहीं अर्जित कर सकता तो क्या करेगा, तो वो कर्म त्याग कर सकता है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो शुद्ध बनता जाएगा। तो भक्त के इस तरीके से भगवान ने ये ऑप्शन हमको इस घर दिए हुए हैं। ये देखिए आपको एक शीट में दिखाया गया है किस तरीके से भक्त लोग जो हैं, ये तीन यहाँ पे बताए गए हैं, मई यमन आधत्स्व, दूसरा मई बुद्धि निवेशया, और तीसरा अभ्यास योग। अभी उसके आगे मत कर्म परमो भव, कर्म खुद के लिए करो लेकिन उनको भगवान की सेवा में दान करो, या फिर सर्व कर्म फल त्याग, अगर वो भी नहीं कर सकते तो किसी अच्छे कर्म के लिए कर्म करो, पढ़ाई के लिए दान देना, गरीबों को दान देना, हॉस्पिटल खोलना, ये कर सकते। श्रेयो ही ज्ञान एवं अभ्यास, 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करो, तो ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान ये हमको बताया उन्होंने। अभी आगे बोलते हैं 12th का बी में कि ध्यान ज्ञान से बेहतर है, क्योंकि ज्ञान जो है वो ध्यान में विकसित होता है। अगर कोई ध्यान नहीं कर सकता तो वो किसी अच्छे कारण के लिए अपने निहित कार्य के परिणामों का त्याग कर सकता है, क्योंकि ऐसे त्याग करने से क्या होता है, व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। अभी 13 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक भगवान उन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं जो भक्तों के अंदर होते हैं और जिनको भगवान बहुत पसंद करते हैं, जिससे भक्त जो है वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो देखिए ये जो गुण बताए जा रहे हैं यहाँ पे, ये कोई भौतिक गुण नहीं है, ये ना तो भक्ति से स्वतंत्र है, ये भक्त के अंदर ही ये गुण प्रकाशित होते हैं। वो जब कोई भक्त भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तब उसके अंदर ये गुण जो है अपने आप प्रकट हो जाते हैं, इसके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो गुण है इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनको बहुत आदर भी देते हैं। अभी इन यहां पे भगवान उन गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भक्तों के पास होना चाहिए। भगवान उद्धव से कहते हैं, नमाम साध्यति योगो न धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस त्यागो यान्ति भक्ति रोधो, न तो मुझे योग के द्वारा, न धर्म के द्वारा, न स्वाध्याय के द्वारा, न तपस्या न त्याग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हे अर्जुन भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त हो जाता हूं। अभी पहले पिक्चर में हम देख रहे हैं कि भगवान ने सुदामा के अंदर बहुत सारे गुणों को देखा और भगवान बहुत प्रसन्न हुए उससे। दूसरे पिक्चर में जगन्नाथ जी के सामने एक राजा होते हुए भी प्रताप रुद्र वो झाड़ू लगा रहे हैं, एक राजा वो झाड़ू मार रहा है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, भगवान हैं। तो इन गुणों को देख के वो जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए वो गुण क्या है हम लोग चर्चा करते हैं। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःख सुखं क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनो बुद्धि यो भक्ता समे प्रिय। बोलते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अगर कभी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दुश्मनी करता भी है तो यह व्यक्ति सोचता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर उसको कभी कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है तो सोचता है मेरे ही पुराने कर्मों का यह नतीजा है, भगवान इसको बहुत कम करके दे रहे हैं, टोकन मनी, टोकन पनिशमेंट दे रहे हैं, मुझे ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए था लेकिन मुझे कम पनिशमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उसकी मन और बुद्धि जो है वो मेरे में निवेश कर जाती है। अब ये जो गुण है ये अभक्तों के अंदर नहीं हो सकते। ध्रुव महाराज और उसके बाद प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, मृगारी, ये मृगारी जो आप सबसे नीचे फोटो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, मृगारी क्या करता था, मृगारी पहले शिकारी था और वो शिकार करता था, उनको पूर्ण रूप से मारता नहीं था, उनको आधा मारता था और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प के वो मरते थे, तो उनको देख के इसको बहुत आनंद आता था। वही मृगारी नारद जी के प्रवचन को सुन के बाद में एक शुद्ध भक्त बन गया और रास्ते में जो चींटियां पड़ी होती हैं, चींटियां जा रही होती हैं, उनके ऊपर भी पैर रखने से संकोच करने लगा कि उनके ऊपर भी पैर ना पड़ जाए मेरा कहीं धोखे से। तो ये जो है प्रताप रुद्र राजा, कैसे एक राजा होते हुए वो एक सिंपल सा कार्य कर रहे हैं, झाड़ू मारने का काम कर रहे हैं, समभाव जो है सुख दुख में। राजा परीक्षित, परीक्षित महाराज, उनको एक बार बहुत तेज प्यास लगी, बहुत प्यास लगी हुई थी। वो जंगल में थे, इधर उधर पानी खोज रहे थे, एक उनको कुटिया दिखाई दी, कुटिया में गए, कुटिया में एक ऋषि जो है वो ध्यान मग्न थे, तो इनको लगा कि वो मेरा आदर नहीं करना चाहते इसलिए ध्यान मग्न होने का नाटक कर रहे हैं, पानी मांगा पानी मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बाहर एक सांप मरा हुआ पड़ा था, उस सांप को उन्होंने क्या किया, उन समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि तो तपस्या ध्यान में थे, उनको पता भी नहीं चला, और ऐसा करके ये परीक्षित महाराज वापस लौटने लगे। बहुत प्यास लगी हुई थी इस कारण से ऐसा हो गया इनसे। रास्ते में सोच रहे थे कि शायद वो मुनि वास्तव में तपस्या कर रहा हो, ध्यान में हो, और मेरे से अपराध हो गया हो। ठीक है, अगर मेरे से अपराध हो गया है तो मैं अपराध की जो भी सजा है उसको भोगने के लिए तैयार। समीक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था संगी, वो परिपक्व नहीं था, पूर्ण ब्राह्मण नहीं था, अभी वो बच्चा था। उस बच्चे को जैसे पता चला कि एक बड़े राजा ने, जो कि पूरे विश्व का राजा है, उसने ऐसा किया है, तो तुरंत उस बच्चे ने हाथ में पानी लेते हुए श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु एक सर्प के काटने से हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज, जो कि बड़े पूरे विश्व के राजा थे, अचानक से उनको पता चलता है कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समभाव, उनको कोई भी, उनका भाव चेंज नहीं होता, सेम भाव रहता है। तो उन्होंने सोचा, देखो कलयुग आने वाला है, अभी मुझे जाने का टाइम हो गया, चलो। गंगा जी के तट पे पहुंच गए और वहां पे सुखदेव गोस्वामी से कई ऋषियों और कई अन्य जो है मुनियों के साथ उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी और बाद में वो अंत में कहां गए, भगवान के धाम वापस चले गए। तो पहले वो सुखी थे, बाद में पता चला 7 दिन में मरने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया, दोनों टाइम वो समभाव रहे, आत्मसंयमी भगवान कहते हैं, उसके अंदर आत्मसंयम करने का पावर होता है। तो प्रभुपाद जी उनके लिए विदेश और वृंदावन एक ही है। प्रभुपाद जी कहते थे, जहां भी हमारा मंदिर है मतलब वो जगह वृंदावन है। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का बीच में फोटो है, हम लोग देख रहे हैं। प्रहलाद महाराज को कई तरीके का कष्ट दिए गए। कष्ट कैसे दिए गए, कभी उनको त्रिशूल से मारने का प्रयास किया गया, कभी सर्पों के बीच में डाल दिया गया, कभी हाथी से कुचलने का प्रयास किया गया, कभी पर्वतों से फेंक दिया गया, कभी समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन हर जगह वो भगवान की भक्ति करने के कारण पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। और दक्ष होना चाहिए भक्त को, दक्ष कैसे होना चाहिए, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी दक्ष, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए चले लंका के लिए, छलांग मारी तो रास्ते में एक सुरसा नाम की एक राक्षसी आई, कहते हैं कि वो सर्पों की मां है सुरसा। तो सुरसा हनुमान जी से कही, सुनो इस रास्ते में जो भी जाता है वो मेरा मेरे मुंह में आए बिना नहीं जा सकता, उसको मेरे मुख में प्रवेश करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, देखो माता, मैं जा रहा हूं भगवान राम का कार्य करने के लिए, एक बार राम जी का कार्य हो जाए मैं राम जी को सूचना दे दूं माता सीता के बारे में, उसके बाद मैं आ जाऊंगा स्वयं, आपका भोजन बन जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी आप कृपया मुझे जाने दें। सुरसा ने कहा, नहीं, मैंने बोला ना जो लंका की तरफ जाता है वो मेरे मुख में आता है। तो इस तरह का हनुमान जी ने देखा, अच्छा नहीं मान रही है, चलो ठीक है। हनुमान जी ने अपने शरीर को विस्तार कर लिया, हनुमान जी ने अपने शरीर का विस्तार किया, एक योजन भर का शरीर कर लिया, एक योजन मतलब 8 माइल लगभग 13 किलोमीटर। तो सुरसा ने क्या किया, अपने मुख का विस्तार कर लिया, एक योजन हनुमान जी थे तो 2 योजन की सुरसा उसका मुख हो गया। हनुमान जी ने अपने आप को 4 योजन कर लिया, सुरसा ने अपने आप को 8 योजन कर लिया। इस तरीके से जैसे जैसे हनुमान जी अपना हाइट बढ़ा रहे थे, स्वरूप बढ़ा रहे थे, वैसे ही सुरसा भी अपने मुख का आकार बढ़ाती जा रही थी। ठीक ऐसे ही कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम अहंकार दिखाना शुरू करते हैं तो सामने वाला भी अहंकार दिखाना शुरू कर देता है, हमारे अहंकार के द्वारा उसका अहंकार भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही हनुमान जी ने सोचा, अरे मैं अहंकार दिखा रहा हूं, यह भी अहंकार दिखाती जा रही है, रोकना पड़ेगा। तो जैसे ही सुरसा का मुख जो है 100 योजन का हो गया, 1300 किलोमीटर का, हनुमान जी एक मच्छर का रूप धारण किए, हनुमान जी अंदर प्रवेश किए मुख के और बाहर आ गए। तो जैसे ही कोई विनम्र बना, सामने वाला व्यक्ति भी विनम्र बन जाता है। सुरसा बहुत प्रसन्न हो गई और सुरसा हाथ जोड़ के कहने लगी, बेटा जाओ तुम राम जी का कार्य संपूर्ण करके आओगे, तुम कार्य करके आओगे राम जी, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। इस प्रकार से हनुमान जी जो है वहां से आगे बढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्त हैं उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। मैं अर्पित मनोबुद्धिन यो मद भक्ता समय प्रिय, वो मन में और बुद्धि को स्थिर करके मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं आगे, यस्मानो दुजते लोको लोकाना दुजतो चयः, हर सामर्स भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच मे प्रियः। बोलते जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं होता, सुख में दुख में भय में चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, और अगर कभी कोई दूसरा हमको दुख पहुंचाता भी है तो यह समझ लेना कि ये तो कर्म का है, ये हमारे कर्म है, इस तरीके से और उसको माफ कर देना। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को माफ कर दिया, इवन भगवान से उनके लिए प्रार्थना भी की। तो ये अवस्था है भक्त की। 15 नंबर 16 नंबर श्लोक, अनपेक्षा सुचे दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी ओ मद भक्ता समय प्रियः। बोलते मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। वो कोई सामान्य वर्ग पर आश्रित नहीं रहता। देखिए भक्तों को क्या करना चाहिए, धन के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, जितना मिल गया उसे में संतुष्ट रहना चाहिए, जितना खाने पीने भर के लिए जितना जरूरी है उतने के लिए ही मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दो बार नहाना, सुबह उठना, हमेशा जो है स्वच्छ रहना, अंदर से बाहर से स्वच्छ रहने का प्रयास करना, इस तरीके से वो व्यक्ति वो भक्ति में प्रसन्न रहता है तो क्या होगा, वो भगवान को प्राप्त करेगा। अगर कोई निंदा करता है तो सोचता है कि अगर उसमें से मुझे कुछ ग्रहण करना है तो मैं ग्रहण करूंगा, बाकी को मैं छोड़ देता हूं। अगर कोई प्रशंसा करता है तो सोचता है कि ये जो प्रशंसा है ये वास्तव में मेरी प्रशंसा नहीं है, ये तो भगवान की प्रशंसा है। और सुबह सर्वारंभ परित्यागी, समस्त प्रयत्नों का परित्याग करने वाला होता है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, यो न हृष्टि न दृष्टि न सोचती न कांक्षति ही शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। न तो कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, न शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, ऐसा समझ के न तो कभी हर्षित होना, न शोक करना, न पछताना, न इच्छा करना, और शुभ और अशुभ दोनों चीजों का परित्याग करना, ये एक भक्त का लक्षण है। तो कभी कभी देखा जाता है कोई व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति की लॉटरी लगी, उसको पता चला उसको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसको हार्ट अटैक आ गया। उसकी पत्नी बेचारी कैसे भी करके उसको हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, देखो उसके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मुझे पता है इसको 1 करोड़ का लॉटरी लगा है, ये बताओ अगर मैंने उसको बचा लिया तो तुम मुझे कितना दोगी, पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने कहा, आधा पैसा मैं आपको दे दूंगी,
जैसे ऐसा बोला डॉक्टर को भी हार्ट अटैक आ गया ना, उसको भी एक्सपेक्टेड नहीं था, 50 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे बिना कुछ मेहनत किए, उसको भी हार्ट अटैक आ गया। हाँ, तो दूसरा डॉक्टर बुलाया गया। तो इस तरीके से व्यक्ति हर्ष हो या शोक हो वो कैसा रहता है, सेम रहता है, तो विचलित नहीं होता है। श्री रूप गोस्वामी ने भी 64 गुण जो बताए हैं उसमें से एक गुण ये बताया है कि वो विचलित नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी से बोला कि हे प्रभुपाद जी, एक बात बताइए मुझे, अर्जुन ने तो पूरी भगवत गीता सुनी, अच्छे से सुनी, लेकिन जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन क्यों रोना शुरू कर दिया? अर्जुन को तो पता था कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, क्यों ऐसा हो गया? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन जरा मुझे बताइए, अर्जुन ने जब इस प्रकार से रो रहा था तो भगवान उसको समझाने के लिए गए। भगवान ने उससे कहा कि देखो, अगर तुम इस प्रकार से रोना धोना शुरू कर दोगे तो क्या हो रहा है, हमारी सेना का विनाश हो रहा है, वो लोग हमारी सेना को, सैनिकों को मार रहे हैं, इसलिए क्या करो, युद्ध करो। तो जैसे ऐसा बोला अर्जुन तुरंत युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। ऐसा नहीं, अरे अभी अभी तो मेरा लड़का मरा है, मुझे 10 दिन का रेस्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ये अंतर है एक भक्त में और दूसरे लोगों में, तुरंत तैयार हो गया। तो ये कभी कभी ये महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी हमारे साथ कुछ गलत घटना होती है, पर व्यक्ति को भगवान की सेवा को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। युद्ध जारी रखा अर्जुन ने, तो कोई कह सकता है अच्छा पूरी अशुभ त्यागना तो अच्छा है, लेकिन शुभ को क्यों त्यागे? यहां लिखा है शुभ अशुभ परित्यागी। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है शुभ और अशुभ दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। जैसे युद्ध करके मरना अशुभ दिखता है, लेकिन अगर कोई कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा है तो शुभ है, क्योंकि कृष्ण का आदेश है। कभी कभी कुछ चीजों को शुभ माना जाता है, लगे कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो खराब होता है। तो जैसे एक पान की दुकान का नाम है रुद्रा मैजिक, और वहां पर शिव जी का एक जो है एक मूर्ति भी रखी हुई है। लोग आते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, फिर पान खाते हैं, तो दिख रहा है कि शुभ है, लेकिन क्या है अशुभ? एक मीट की शॉप थी, काली माता के नाम पर उन्होंने मीट की शॉप रखी। तो जो कृष्ण का भक्त है वो दोनों को त्याग देता है, अनेपक्ष अनपेक्ष होता है। 17-18 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, समह शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। क्या है? समह शत्रो च मित्रो च, मित्र और शत्रु उसके लिए कैसे हैं? समान है। मान और अपमान कैसा है? समान है। शीत उष्ण यानी गर्मी और सर्दी दोनों समान, सुख दुख समान। समह संग विवर्जितः, समस्त संगति से वो मुक्त होकर समभाव रहता है। उसके लिए तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, उसके लिए निंदा और स्तुति दोनों कैसी हैं? सेम है। संतुष्टो येन केनचित, वो किसी तरीके से क्या रहता है? संतुष्ट रहता। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे, समह शत्रो च मित्र। ऐसे युधिष्ठिर महाराज, वह दुर्योधन को भी शत्रु नहीं मानते थे। तो ऐसा बताते भगवान, जब कभी किसी का अपमान होता है तो सोचता है वो व्यक्ति कि मैंने भी किसी का अपमान किया होगा, इसीलिए उसका कर्म का बंधन जो है मेरे ऊपर लागू हो रहा है और मुझे मरना पड़ रहा है। कभी कभी देखा जाता है कि दो लोगों ने युद्ध शुरू किया, आपस में लड़ाई शुरू किया, दो घरों में लड़ाई होगी, फिर उनके पुत्र होते हैं, उनके पुत्र भी आपस में लड़ाई करते रहते हैं, उनके पौत्र होते हैं वो भी आपस में लड़ाई करते रहते हैं। क्यों? थोड़ी सी छोटी सी बात के लिए। क्योंकि आजकल लोगों के अंदर सहनशीलता सहिष्णुता खत्म हो गई, वो गुणों के संगति में इस तरीके से बंधे हुए हैं कि उनको इतनी सारी कमियां हो गई हैं। इसलिए जो भक्त होता है वो क्या करता है? वो माफ कर देता है। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार भी करता है तो उसको माफ कर देता है। अनिकेता, अनिकेता मतलब होता है जिसका घर बार नहीं है, अनिकेता उसको बोलता है। तो उनको कोई बड़े घर की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब मायापुर आए तो मायापुर में उनके लिए बड़ा सारा हॉल एक रूम बनाया गया। प्रभुपाद जी से बोला आप इस रूम में रहिए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं इस रूम में रहने की, मैं तो एक वो सिंपल चीज जो जिसमें मैं पहले रहा करता था एक झोपड़ी उसी में रहूंगा। तो प्रभुपाद जी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिए, लेकिन लोग कई सारे लोग मिलने के लिए आते थे तो उधर जगह कम थी। तो भक्तों ने पुनः निवेदन किया प्रभुपाद जी से कि कृपया आप अपने इसी गेस्ट हाउस में आके रुके। तो प्रभुपाद जी आके उस गेस्ट हाउस में रुकने लगे। अभी उनके लिए वो झोपड़ी और वो गेस्ट हाउस का बड़ा सा आलीशान रूम दोनों समान है। तो ये भक्त के लक्षण बताए गए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा और स्तुति को क्या बोलता है, तुल्य मानता है। तो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। स्थितिर मतिर भक्ति मान में प्रियो न रहा। और जैसे जब कोई भक्त भगवान की चर्चा आती है तो खूब बात करता है, और जब प्रजल पाता है तो क्या करता है, वो रुक जाता है। तो वैसे ही भगवान बताते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं परिउपासते श्रद्धाना पद परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहता है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भक्त जो है वो भगवान को प्रिय होते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक मैया वेश मनो ये माम, यानी मुझ पर ध्यान स्थिर करो, वहां से लेके ये तो धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वह स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है और जो साकार भगवान की सेवा में लगा है वह श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है इन दोनों में। भगवान ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार के समस्त विधियों में भगवान की भक्ति जो है वो निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनता है और तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतः उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित किया, अभी उसको निराकार नहीं बल्कि साकार रूप की उपासना शुरू कर देनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता निराकार की धारणा उसके लिए अच्छी है। परम सत्य के निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना मत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात के इतने सोपान पार नहीं करने होते, ये एक सीढ़ियों के समान है। और भक्ति क्या है, वो एक लिफ्ट। सुदाम शुद्ध भक्त के पास सभी अच्छे गुण आ जाते हैं। हरा व भक्त से कुतो महत गुणा, जो हरि का भक्त नहीं है उसके पास गुण कहां से आएंगे, वो तो अन्य चीजों में लगा रहता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास सभी गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ये सारा बताते हैं। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, प्रहलाद महाराज के बारे में। निसुरसा। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान उनका पर्सनली ख्याल रखते हैं। तो इस प्रकार से आज का अध्याय यहां पे संपन्न होता है। चार विषयों के बारे में हमने चर्चा की। इस अध्याय को चार भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में। पहले में भगवान से अर्जुन पूछता है कि कौन सा रास्ता अच्छा है और भगवान उसके बारे में बताते हैं, अव्यक्त या व्यक्त। और भगवान फिर अपनी भक्ति के बारे में यहाँ पे ऑप्शंस बताते हैं और अंत में भक्तों के स्वभाव के बारे में चर्चा की गई है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज के?